ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. کل ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن کا مقصد اللہ کی طرف سے دعوت دینا ہے، اللہ کی طرف دعوت دینا ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہے، اور وہ دعوت جو ہے وہ دو چیزوں پہ مشتمل ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے لیے اس کی توحید کو ثابت کرنا ہے پہلی بات، جو کہ قرآن کریم یہ کام خود کر لے گا انشاءاللہ العزیز، اور دوسرا جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کوئی اس کی ذات یا صفات میں شریک ہوتا ہے تو ہمیں اس کی شرکت کو ڈینائی کرنا ہے، یعنی کہ اس کو رد کرنا ہے، اس کو منع کرنا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شرک ہے کیا، جس کو ہمیں اس کو اللہ کی ذات اور صفات سے پہچاننا ہے کہ یہ نہیں، یہ چیزیں بندے کا کی خاصہ ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کا خاصہ ہیں. تو شرک جو ہے وہ یہ ہے کہ شریک کرنا، سمپلی ہم اس کو لفظی طور پہ اس کو اس طرح ڈسکرائب کرتے ہیں، اور شیئرنگ کا لفظ بولا جاتا ہے بہت زیادہ. بندوں کے لیے تو آپس میں معاملات میں شیئرنگ کرنا، باتوں میں شیئرنگ کرنا، ہر چیز میں بڑی اچھی سمجھ آتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے لیے یہی چیز ایک ظلم بن جاتی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا جو ظلم ہے نا جو کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مان کے ہو رہا ہے، چاہے اس کی ذات میں کیا جائے یا صفات میں کیا جائے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شرک جو ہے وہ ہوتا کیوں ہے، ہمارے اندر کیوں آتا ہے شرک، جبکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ابتدا سے پہلے جو انسان کو پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو وہی نبی تھے، ان کو ہی ہدایت دے کے بھیجا، وہی دے کے بھیجا، اور ظاہر ہے ایک نبی کی جو اولاد ہے اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور عادتیں بھی جو ہیں وہ سنت انبیاء کے مطابق ہونی چاہیے تھیں، اور وہ ہوا بھی. لیکن کچھ عرصے سلسلہ چلتا ہے، اس کے بعد انسان کو جو ہے وہ شیطان بہکانا شروع کر دیتا ہے آہستہ آہستہ. تو کیا وہ وجوہات تھیں جن کو مطلب کمزوری جانا شیطان نے انسان کی، اور اس کی وجہ سے اس نے انسان کو اللہ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، اور اس کی شرک اس نے جو ہے وہ انسان نے جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا، اور وہ شیطان کی پارٹی میں اس کا مددگار بن گیا، بجائے اس کے کہ وہ رحمان کا مددگار ہوتا وہ شیطان کا مددگار بن گیا، اور اس کو معلوم بھی نہیں ہے اس بات کا. یہ سارا جو آپ کو پتہ ہے نا کہ کھیل چل رہا ہے، یہ سارا کہاں سے چل رہا ہے، یہ ساری جو واقعہ چل رہا ہے، جو بات ہے، یہ سب کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ یہ سب ساری بات شروع ہوئی تھی اس وقت سے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا اور شیطان سے کہا تھا کہ ان کو سجدہ کرو. جب وہاں انہوں نے سجدہ کرنے سے شیطان نے انکار کر دیا تھا، ابا واستکبرا، اس نے کہا کہ میں تو نہیں کروں گا، اس نے جو ہے وہ تکبر کیا، اس نے کہا کہ اس کو تو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے. تو وہاں اس نے جو نفی کی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی اور اس کے سامنے اپنی نافرمانی کو ظاہر کیا تھا، تو وہیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا فیصلہ کر دیا تھا کہ ان کو دنیا میں زمین پہ اتارنا ہے، اور اس کے بعد اس انسان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے پیدا کیا تھا کہ یہ مجھے دیکھے بغیر، جانے بغیر جو ہے نا میرے اوپر ایمان لے کر آئے، چاہیے اس کو شیطان جو ہے وہ کتنا ہی کیوں نہیں بھٹکائے گا. اب شیطان نے انسان کی دو کمزوریاں پکڑ لی ہیں. دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی شرک ہوتا ہے اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، علماء کرام نے اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں. پہلی جو وجہ ہوتی ہے دیکھیں دنیا میں کہیں پہ بھی شرک کرنے کی، وہ ہوتی ہے کہ انسان یا تو حد سے زیادہ محبت اور میں جو ہے نا وہ اضافہ کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے وہ کسی بھی انسان کا معیار یا کسی بھی چیز کا معیار اتنا بڑھا دیتا ہے کہ وہ چیز اس معیار کی نہیں رہتی بلکہ اس سے اس کا قد بہت اونچا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ کسی نے آگ کو دیکھا، وہ اس سے خوف زدہ ہو گیا تو وہ اس کو ڈر کے پوچھنے لگ گیا کہ ہائے یہ ہوگا شاید، یہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے تو یہ مجھے تحفظ دے دے. یہ ویکنس ہے انسان کی کہ اس کو کسی نہ کسی چیز کے ساتھ جو ہے نا وہ اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے، اس کو اپنی پرسنالٹی کو جو ہے وہ مضبوط رکھنے کے لیے جو ہے وہ اس کو ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے بچے کو اور عورت کو ایک مرد کی ضرورت ہوتی ہے معاشرے میں رہنے کے لیے، اسی طرح ہر انسان کو ایک کائنات کے رب کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ایک اس کی تلاش بھی ہے جو اس کے وجود کا حصہ ہے. کیونکہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے کہ قیامت دنیا میں دنیا بننے سے پہلے اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کی روحوں کو عالم ارواح میں جمع کیا تھا اور ان سے عہد لیا تھا اور ان سے پوچھا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو तो सब ने एक आवाज़ में कहा था कि कालू बला, तो वहाँ रूहों से अहद लिया था कि हाँ क्यों नहीं, आप हमारे रब हैं। और उसी अहदनामे को जो है ना वो दुनिया के अंदर जो है वो टेस्ट करने का टाइम आता है। तो ऐसे में इंसान की जो रूह है वो अंदर से तलाश करती है उसी रब को, और कहीं अपने खालिक के साथ इसका ताल्लुक जो है वो जुड़ा हुआ होता है कि जिसने उसे पैदा किया होता है। तो ये जब किसी भी चीज़ उसको समझ में नहीं आती है, अपनी अक़ल से वो समझता नहीं है इस चीज़ को, कायनात की निशानियों में गौर करके अपने हालात से, अपनी ज़िंदगियों से, अपनी तब्दीलियों से, इल्हामी किताबों से, पैगंबरों के ज़रिए जो जो हालात भी उसके ऊपर आए हैं, तो फिर यहाँ पे वो गड़बड़ कर देता है। और बाज़ दफ़ा वो किसी भी चीज़ से इम्प्रेस हो के या किसी चीज़ से डर के या किसी भी चीज़ में मोहब्बत से ज़्यादा गुलू करके, इजाफ़ा करके वो शिर्क का मर्तकब हो जाता है। मिसाल के तौर पे देखें, जिनको सही किताबें दी गई उन्होंने भी शिर्क किया। वो किस तरह के अल्लाह ताला के नबी जो थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनकी कौम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मान लिया। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे एक अजीब सी बात हो रही थी ना, एक मिरेकल हो रहा था कि एक बच्चा पैदा हुआ है और उसके वालिद नहीं, तो कैसे ये मुमकिन हो गया? लोग हैरान थे इस बात पे, क्योंकि अक़ल यहाँ पे परखती नहीं है। देखिए, इसीलिए मैंने इब्तिदा में ना आपको वही की जो है और अक़ल की और हवास की एक्सप्लेनेशन दे दी थी, ताकि हर पिछली बात से मेरी अगली वाले लेसन का इंशाल्लाह रब्त होगा, तो वहाँ आपको समझ आ जाए कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं सीखने समझने के लिए, जिनमें हमारे हवास हैं, जो सेंसेस हैं हमारी, हमारी अक़ल है, लेकिन कहीं पे जाके हमारी अक़ल जो है वो काम नहीं करती, तो वहाँ हमें रास्ता जो है वो वही दिखाती है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पैदा होने के फ़ौरन बाद कलाम करना शुरू कर दिया था अपनी वालदा साहिबा के गोद में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की, क्योंकि हज़रत मरियम को तो अल्लाह ताला ने कहा था कि आपने चुप कर रोज़ा रखना है और आपने कुछ नहीं बोलना, और उन्होंने कहा कि मैं तो अल्लाह का नबी हूँ और मैं जो हूँ वो पैदा हुआ हूँ और सलामती के साथ। और इसी तरह उन्होंने बताया कि और जब कि भाई मैं तो मबूस हो गया हूँ नबी के तौर पर, तो सब लोग जो हैं वो बड़े हैरान हो गए, क्योंकि ये चीज़ तो बिल्कुल एक अलग बात थी। उन्होंने कहा वाकई ये तो अल्लाह के नबी हैं। और जब वो ज़ाहिर बड़े हुए तो उसके बाद अल्लाह ताला ने उनके हाथ से जो मौजज़ात दिखाए, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि आम आदात से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, कि जैसे कोढ़ के मर्ज़ को अल्लाह के हुक्म से भी इज़्ने अल्लाह जो है वो हाथ लगाते थे और कहते थे कि तुम ठीक हो जाओ अल्लाह के हुक्म से, तो वो ठीक हो जाता था। फिर इसी तरह वो किसी मुर्दे को हाथ लगाते थे और कहते थे कुम भी इज़्ने अल्लाह, खड़े हो जाओ अल्लाह के हुक्म से, तो वो उठ के ज़िंदा होकर खड़ा अल्लाह ताला उसको कर देते थे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये मुइज़ात होते थे उनके हाथ के ऊपर। तो उसको सुन सुन के जो है वो लोग जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा ताज़ीम और रिस्पेक्ट करने लगे, हद तक एक गिरोह तो बिल्कुल कहने लगा कि ईसा तो है वो अल्लाह के बेटे हैं। फिर उनके साथ मज़ीद ये हुआ कि क्योंकि वो अपनी सोचों को उस तरह से नहीं वो कर सके, और बहुत ज़्यादा हालांकि इतना कुछ देखें उनके साथ हुआ है, सामने नज़र आ रहा है कि नबी इतने मुआजे करें, लेकिन फिर भी बहुत कम हवारीन जो हैं वो उनके जमा हो सके। और जो यहूदियों का बुग़्ज़ और अदावत था उसने जो है वो इनके दीन को फैलने नहीं दिया, और आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ लिया गया और उनको मसलूब करने का हुक्म दे दिया बादशाह ने। और फिर आपको मालूम ही है कि उनको अलग अलग आसमानों पर उठा लिया और जो दूसरा शख्स था उसको उनका हमशक्ल कर दिया। तो ये सब चीज़ें जो हुई वो क्यों हुई? क्योंकि उन्हें दोबारा अल्लाह ताला ने वापस दुनिया में भेजना था। तो शिर्क की जो एक वजह ये थी कि नसारा में भी ये चीज़ हुई ईसाइयों के अंदर, कि उन्होंने अपने नबी को जो है वो हद से ज़्यादा मोहब्बत की वजह से अल्लाह का बेटा बना लिया, तो इस तरह शिर्क कर लिया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को फिर जो है वो अल्लाह की बीवी बना दिया। इसी तरह रूहुल कुदस ने, क्योंकि उनके गरेबान में फूका था, तो कहीं पर एक फ़िरका ये बन गया कि रूहुल कुदस और मरियम और अल्लाह, और एक जगह ये बन गया कि भाई मरियम हैं और ईसा हैं और रूहुल कुदस हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िरके बंदियाँ उनके अंदर हो गई। इसी तरह नसारा ये यहूदियों के अंदर भी ये हुआ कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो हैं उनको उन्होंने अल्लाह ताला का बेटा बना लिया, क्योंकि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के साथ भी ये हुआ था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जो है वो, ये हम सूरह बकरा के अंदर इस वाक़े को इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे, कि अल्लाह ताला ने उनको 100 साल के लिए सुला दिया था, और जब सो के उठे तो उनका जो गधा था वो बिल्कुल पानी हो चुका था, लेकिन उनका जो खाना था वो रखा हुआ था और उसी तरह तरोताज़ा था, और बाकी सारी बस्तियां भी उजड़ चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। तो वो उठे तो लोगों को बताया, उन्होंने कि मैं तो उज़ैर हूँ जो कि अल्लाह ताला का नबी था। लोगों ने कहा कि आपको हम कैसे मान लें कि आप अल्लाह के नबी हैं? तो मैंने आपको पहले बात बताई थी ना कि पहले अम्बिया को ही सिर्फ किताबें याद होती थी अपनी इल्हामी, तो उन्होंने जो है वो तौरा की जो तख्तियाँ थी वो पढ़नी शुरू कर दी ज़ुबानी, के भाई तौरा में तो ये आया था मूसा अलैहिस्सलाम का। इस तरह से हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को उन्होंने, तो उन्होंने उनको इतना गुलू कर दिया, इतना चढ़ा दिया, उनको भी कि उन्होंने उनको भी सोचा कि भाई ये अल्लाह ताला के बेटे हैं। तो ये जो वजह थी ये शिर्क की वजह बनी, और ये बड़ी पावरफुल वजह होती है जिसकी वजह से इंसान का माइंडसेट चेंज होता है। मोहब्बत, तो मोहब्बत में हद से ज़्यादा जब इंसान बढ़ जाता है तो वो हद शरई को पार कर जाता है। दूसरी जो वजह होती है वो भी बड़ी पावरफुल और इम्पॉर्टेंट है, वो होती है नावाकफियत। शरीयत की जो जितने भी उमूर होते हैं, जितनी भी बातें होती हैं, उनसे मुकम्मल तौर पे जो है वाकफियत ना रखने की वजह से इंसान जहालत का मर्तकब हो जाता है, और उसके जो है वो अमाल के अंदर जो है वो जहालत आ जाती है, और उसकी वजह से वो शिर्क कर जाता है बाज़ दफ़ा। ये जो बात है ये ज़्यादातर शिर्क की अमली जो किस्म होती है उससे ताल्लुक़ रखती है, या फिर बिदअत का नाम एक आपने सुना होगा कि बिदअत क्या होती है, बिदअत से ताल्लुक़ रखती है। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे बिदअत जो है वो उसको कहा जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर अगर कोई भी अमल ऐसा था जो कि आपने उसका हुक्म नहीं दिया, इजाज़त नहीं दी, ना आपके सामने आपने खुद सरज़द फरमाया उसको, और ना जो है वो आपके सामने सहाबा ने किया, और ना सहाबा का उस पर कोई अमल मिलता है, और तीसरा बल्कि जो दौर आता है उसके अंदर भी वो कोई अमल नहीं मिलता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बाद के दौर में भी, तो और उसको जो है वो दीन का हिस्सा समझ लिया जाए अगर मुस्तकिल तौर पे, तो उसको बिदअत कहा जाता है। क्योंकि इसमें उलमा इकराम एक बड़ी पावरफुल हदीस है जिसको बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हदीस है जिसको कोट करते हैं, जो इस तरह से है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि औ कमा कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल क़ुरून करनी सुम्मा लज़ीना जलौनहुम सुम्मा लज़ीना जलौनहुम, कि बेहतरीन दौर जो है वो मेरा दौर होगा, और उसके बाद यानी कि मेरे दौर में जो कुछ हुआ वो सब जो है वो प्रैक्टिसिंग होगा और वो बिल्कुल इस्लाम में शामिल होगा। सुम्मा लज़ीना जलौनहुम, उसके बाद वो दौर है जो कि मेरे सहाबा का दौर है, और तीसरा कौन सा दौर है, सुम्मा लज़ीना जलौनहुम, जो सहाबा के साथ ही जो उनके शागिर्द हैं, यानी कि जैसे मिसाल के तौर पर हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके शागिर्द थे हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु, अनस रज़ी अल्लाह अन्हु के शागिर्द थे इमाम ज़हरी, और उनके जो शागिर्द थे वो हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला थे। तो ये वो उलूम की चेन्स हैं जो कि हमारे पास दीन को महफूज करने का ज़रिया बनी है। अगर इन उलूम की चेन्स के अलावा में हमें कोई ऐसी चीज़ अपने आमाल में नज़र आती है, हमारे माशरे में नज़र आती है, हमारी आदात अखलाक में नज़र आती है, जो कि जिसको हम दीन का हिस्सा समझते हैं, और हम उसको बहुत ही मतलब जो है वो रेगुलर बेसिस की बुनियाद पर करते हैं, और हम ये समझते हैं कि इसको किए बग़ैर हो सकता है कि हमारी इबादत नाकिस रह जाए, या हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इबादतों को कबूल ना करे, तो वो चीज़ें जो हैं वो बिदात कहलाती हैं। और बिदात के बारे में जो है ना वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आई है, और उसका मफहूम इस तरह से है कि उन्होंने फरमाया ना कि बिदत जो होती है वो दीन को ढाने के लिए होती है, उसके मफहूम में ये बात बयान की जाती है कि बिदत जो होती है वो दीन को ढाने के लिए होती है, यानी कि गिराने के। आपने अगर एक बिदत को चुन लिया किसी को भी, तो गोया आपने अपने दीन को, बजाय इसके कि आप तो ये समझ रहे होते हैं कि मैं कोई नेक अमल कर रहा हूँ बिदअत, हालांकि वो एक नेक अमल होता है, लेकिन आप उसके ज़रिए क्या कर रहे हैं कि दीन के नक्शे को टेढ़ा करना शुरू कर दिया आपने। क्योंकि उलमाए किराम इसके बारे में ये कहते हैं कि खुदा ना खास्ता क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा को, या उनके बाद आने वालों वाली जो उनके तबाई ताबईन उनको कहा जाता है, जिन्होंने सहाबा से ताबईन कहा जाता है उनको, जिन्होंने सहाबा से इल्म हासिल किया, उनकी तबाह करने वालों को ताबईन कहा जाता है, तो उन्हों इन्हें खुदा ना खास्ता क्या मालूम नहीं था इन बातों का जिनको अब बाद में दीन का हिस्सा बनाया गया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बिदअत कहलाती हैं। इसके अलावा इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला ने भी इस बारे में बात बयान फरमाई है कि अगर किसी शख्स ने ये कहा, कोई ऐसी चीज़ जो कि बिदअत थी, लेकिन उसने ये कहा कि ये बात सही है अब, तो उसने बेशक इस बात के ऊपर इल्ज़ाम दिया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि गोया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबूवत के इलम भेजने के अंदर खयानत फरमाई है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर हम तक अपने नबूवत के इलूम पूरे नहीं पहुँचाए, तो आप ज़्यादा मुनासिब समझते हैं इन बातों को कि हमें अब उनको पूरा कर लेना चाहिए। तो ये बात माज़ल्ला, अल्लाह हमें अपनी पनाह में रखे इस चीज़ से कि कुरान और सुन्नत दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी ने हमें खुद वसीयत में फरमाई कि मैं आपके अंदर छोड़ के जा रहा हूँ, और अपने सहाबा के बारे में फरमाया ना कि असहाबी कन नजूम, मेरे तमाम असहाब जो हैं असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सितारों की मानिंद हैं, उनमें से किसी एक की भी तुम रहनुमाई करोगे ना, की रहनुमाई पकड़ोगे तो तुम फतेहयाब हो जाओगे। तो ये चीज़ें अहादीस का हिस्सा हैं, अहादीस में मिलती हैं, इसमें किसी किस्म की कोई सेकेंड ओपिनियन नहीं है, ठीक है, कोई दूसरी ऐसी बात नहीं है किसी भी किस्म की, तो इसको जो है वो इसी तरीके से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और समझना चाहिए। क्योंकि देखें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊं वो यह है कि दो चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में जो कि दीन का हिस्सा होती हैं। पहली चीज़ होती है अकीदा और दूसरी चीज़ होती है अमल। अकीदा ये होती है कि जो चीज़ हमारे अकायद में है, हमारी थॉट्स हैं और बेस करती हैं वो हमारी रिलीजन में जो चीज़ें हम उनको बेसिक्स बनाते हैं। हम सोचते हैं कि अच्छा ये है अल्लाह है तो उसकी किताब भी है, और उसकी किताब है उसका रसूल भी है, उसको लाने वाले फरिश्ते भी हैं। अब किताब के अंदर जो बात लिखी गई है वो भी है सारी की सारी। समझ आ रही है आपको बात? किताब से मुंसलिक जितने 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 जितनी भी पर्सनैलिटीज़ हैं, अब वो कौन कौन थी उस ज़माने में, जैसे सहाबा किराम की जमात है वो भी हैं, उनका सारा अमल देखा जाएगा, सहाबा किराम का सारा अमल देखा जाएगा, पूरी उनकी हिस्ट्री कि किस तरह से उन्होंने अपने अपने दौर में खिलाफत के अंदर इन अहादीस पे और कुरान के ऊपर अमल करके देखा। तो ये सब चीज़ें हमारे अकायद का हिस्सा हो जाती हैं एक तरह से। और दूसरी चीज़ होती है अमल, वो हमारे अमाल होते हैं। तो आप ये देखें कि एक हदीस मुबारक आती है क़यामत के बारे में, अहवाल में, उसमें देखें आप ये देखें कि जब हम बहुत ज़्यादा डिटेल में क़यामत का सब कुछ पढ़ते हैं अहवाल वग़ैरह, तो वहाँ मैं एक चीज़ आपको बताऊँगी कि जब इंसान आखिर में जहन्नुम में चला जाएगा और गुनाहगार होगा हिसाब किताब के बाद, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो शिफात फरमाएंगे मुसलमानों की, और अल्लाह ताला जो है उनको मकाम महमूद अता फरमाएंगे, आपको मालूम है, और ख़ास कबीरा गुनाहों की शिफात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, और उसके अलावा जो गुनाह जो हैं वो मुसलमानों के होंगे तो आप उनको आहिस्ता 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 करके जहन्नुम से निकालेंगे, निकलवाएंगे अल्लाह ताला के इज़्ज़त से, और उनकी सिफारिश करेंगे, अल्लाह ताला जो है उनकी सिफारिशों को कबूल करेंगे। तो आखिर में जो है वो दूसरी उम्मतों के मतलब जो लोग होंगे जो मुवाहिद होंगे यानी जिन्होंने अल्लाह को माना होगा, उनके पास कोई नबी उस वक्त नहीं आया था तो वो होंगे, तो नबी पास अल्लाह ताला से कहेंगे अल्लाह ताला और कुछ ऐसे लोग भी अंदर हैं जिन्होंने मतलब जो है ना आपकी इबादत की है खालिस, उनके उस दौर के अंदर ना कोई नबी नहीं थे लेकिन उन्होंने खालिस, तो वो मुवाहिद हैं मुशरिक नहीं हैं। तो अल्लाह ताला कहेंगे कि ये तो मेरे ही मतलब इज़्ज़त और जलाल के ऊपर लाजिम आता है कि मैं उनको निकाल लूँ, तो इसके लिए आपको उनकी सिफारिश करने की मतलब ज़रूरत नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको निकाल लेगा। क्योंकि इसकी तायीद इस बात से भी होती है कि जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा ना, उसको जहन्नुम से निकाल ही लिया जाएगा बिलाखिर, कितना भी वो अज़ाब झेलता है, और आखिर में आके मतलब जब अल्लाह ताला चाहेगा तो उस शख्स को मतलब वहाँ पे ढूंढा जाएगा लोगों को कि भाई इसके शख्स कोई ऐसा शख्स है जो कि बहुत ही गुनाहगार गुनाहगार था और उसने सारे अपने आमाल की गुनाहों की सज़ा मतलब जो है वो काट ली है, तो अब इस शख्स को जो है ना मैं जहन्नुम में से निकाल देना चाहिए। तो ये उसका जो पैमाना होगा वो यही होगा कि उसके दिल में अगर राई के दाने के बराबर भी तौहीद या ईमान मौजूद होगा तो उसको निकाल लिया जाएगा। इसी तरह देखें एक हदीस में भी आता है कि एक शख्स आएगा उसके 99 जो वहाँ पे जो अरबी लिखी है उसका तर्जुमा दफ्तर किया जाता है, मैं कह दूँ कि फोल्डर्स और फाइल्स कह रहे हैं, यानी कि 100 फाइल्स हम लेके गए मिसाल के तौर पे अल्लाह के पास, किसी की 50 जो है वो नेकियों की थी, 50 बुराइयों की थी, किसी की 70 नेकियों की थी, 30 बुराई की थी, किसी की 70 बुराई की थी, 30 नेकियों की थी, तो एक शख्स आएगा उसकी 99 जो है वो बुराइयों की होंगी, तो वो सारी की सारी एक पलड़े में डाली जाएंगी, तो वो पलड़ा जो है वो झुकना शुरू हो जाएगा, वो इतना झुकेगा इतना झुकेगा इतना झुकेगा कि वो शख्स कहेगा कि अल्लाह ये तो मतलब मैं क्या करूँगा कि मतलब मेरे पास तो कुछ है ही नहीं आपको देने के लिए, कि मैं तो बच ही नहीं सकता आज के दिन। तो उसके बाद एक जो है ना वो कागज़ लाया जाएगा, रुका रुका जिसे आप कहते हैं, और वो ला के ना दूसरे पलड़े में रख दिया जाएगा। हदीस मुबारक में आता है कि वो पलड़ा झुकना शुरू होगा झुकना शुरू होगा झुकना शुरू होगा, और आहिस्ता आहिस्ता झुक के जो है वो पलड़ा इतना झुक जाएगा वजन से कि वो 99 जो फोल्डर्स थे और फाइल्स थे ना गुनाहों के, वो सारे के सारे जो है वो ऊपर चले जाएंगे, और वो पलड़ा जो है वो झुक जाएगा बिल्कुल। तो ये क्या होगा, इस क्या लिखा हुआ होगा इसके ऊपर? इसके ऊपर लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह। उस शख्स ने उसको इतने खुलूस से पढ़ा होगा किस अदा से पढ़ा होगा, किस मोहब्बत से पढ़ा होगा, और मालूम नहीं कि उसके अकीदे में इतनी रासखियत, मतलब पक्की बात, रिजिडिटी, इतना यकीन अल्लाह के ऊपर कामिल और मोहकम था कि अल्लाह को वो इतना पसंद आया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके खुलूस, उसकी मोहब्बत और उसके इश्क और उसकी जो यकीन ने मोहकम था अल्लाह ताला के ऊपर, तो उसने जो है वो अल्लाह ताला ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नत में भेज देंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे ये बात बतानी आपको थी असल में ज़रूरी, कि देखें अकीदा जो है वो इतना इम्पोर्टेंट होता है, इतना इम्पोर्टेंट होता है कि अकीदा जो है इंसान के अमाल तो आते हैं साथ, ठीक है, लेकिन अगर अकीदा सही ना हो, अमाल बहुत सारे लेके आप चले जाएं। तो आप मुशरिकीन कुफ्फार के साथ क्या है कि अमाल तो उनके बहुत अच्छे हैं। अब आप ये देखें कोरोना वायरस के लिए कितने अरबों खरबों डॉलर्स दे रहे हैं नॉन मुस्लिम्स, ठीक है, तो उनकी हसनात, उनकी नेकियां, उनकी कमाइयाँ, उनकी सब चीज़ें कितनी ज़्यादा हैं, और वो दुनिया के लिए कितने सोशल वेलफेयर के काम भी कर रहे होते हैं कुछ, तो सब कुछ है अमाल। लेकिन अगर अकीदे में ही शिर्क हो और अल्लाह ही को कबूल नहीं किया, जो सबसे बड़ा जुल्म है, तो वो जुल्म सब चीज़ों पे के ऊपर हावी आ जाएगा। तो इसलिए बरे मेहरबानी इस चीज़ को बहुत मामूली मत लें। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये है कि मैं आपको ये चीज़ समझा दूँ अच्छे तरीके से, कि जो कुरान के अंदर जो दर्द मौजूद है वो इस चीज़ का दर्द मौजूद है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरी मखलूक मुझे मानती नहीं, मेरी मखलूक जो है मुझे जानती नहीं, सबसे बड़ा जुल्म मेरी मखलूक मेरे ऊपर ये करती है कि जो है वो मेरे साथ और हस्तियों को पुकारती है, शिर्क करती है, और मेरे नबी के रसूमात के अंदर बिदात जो है वो करती है। तो शिर्क जो है वो दो तरह का होता है। एक शिर्क होता है जो कि जाहिर होता है बहुत ज़्यादा, इसे हम बचपन से पढ़ते आए कि शिर्क जली होता है जो कि बहुत वाज़े होता है, और एक शिर्क जो होता है वो बहुत ही वो छुपा हुआ होता है, इसको हम शिर्क खफी कहते हैं, जो कि हमारे आमाल के अंदर मौजूद होता है। इन दोनों शिर्क की अकसाम को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगले लेसन में इंशाल्लाह मैं आपको ये दोनों अकसाम बताऊँगी शिर्क की, ताकि आपका जहन एक मरतबा समझ जाए इस बात को कि किस तरह से कुरान मजीद जो है वो हमसे हमारे अकीदे को दुरुस्त करवाना चाहता है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि श्राह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हु क़ौली। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम कुरान मजीद के जो उलूम हैं उनके बारे में बात करेंगे कि कुरान मजीद के अंदर कुल कितने उलूम हैं। जितने लोगों ने आज तक कुरान मजीद की तफासीर लिखी हैं, उन्होंने अपने अपने तौर पे कुरान मजीद को समझा है, उसे डिस्क्राइब किया है, उसकी तफसीर की है, ठीक है, तो उस लिहाज से हर शख्स ने उसको मुख्तलिफ तरह से जो है ना वो कैटेगराइज़ किया हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई कहता है कि कुरान करीम के अंदर टोटल 10 उलूम हैं, ठीक है, इमाम गज़ाली रहमत अल्लाह के यहाँ जो है वो इनकी इसके अंदर 10 उलूम हैं, ठीक है। इसी तरह जो मशहूर है मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी साहब ने जिसका तذکرہ किया है कि इसमें 6 उलूम हैं, और हज़रत शाह वली उल्लाह रहमत ताला ने ज़िक्र फरमाया कि इसके अंदर 5 उलूम हैं, ठीक है। और एक और बहुत बुनियादी जो बात है इसको समझने में, जिसके तहत हम इन तमाम टॉपिक्स, इन तमाम आरा के तहत हम इंशाल्लाह कुरान के उलूम को समझेंगे जब हम कुरान मजीद को पढ़ेंगे तो। लेकिन बताने का मकसद ये है कि इन सब को एक दफ़ा आप सिर्फ सुन लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि उलूमुल कुरान होते क्या हैं। और चौथी जो बात मैंने आपको बतानी थी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह का कॉल था कि ये अल्लाह ताला के चार जो तीन औसाफ़ का बयान है और एक कयामत का बयान है, तो ये मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मौलाना शब्बीर उस्मानी साहब ने जो कहा, जो कि बड़ा आसान सी राय है जो आराम से समझ आ जाती है लोगों को, कि वो जो 6 बातें कुरान मजीद में ज़्यादा डिस्कस की गई हैं, यानी जिन 6 बातों के ऊपर कुरान मजीद के तमाम उलूम को जमा किया जा सकता है, वो एक तो तौहीद है, ठीक है, दूसरी जो है वो रिसालत है, तीसरी क़यामत का बयान है, चौथी जो है वो इबादत के बारे में है, उसमें अहकामात वग़ैरह भी आ जाते हैं सारे, पांचवी बात जो है वो है मवाफिक का ज़िक्र करना, यानी कि जो अंबिया हैं उनके किस्से वग़ैरह और नेक लोगों के किस्से या किसी भी किस्म के जो हैं वो ख़बरें और जो है वो कसस और कहानी वगैरह जिसका जो भी ज़िक्र है
یا تذکرے، تو وہ سارے جو ہیں وہ ذکر الموافق کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور چھٹی چیز جو ہے وہ ذکر المخالف ہے، یعنی مشرکین کا بیان. اس میں چاہے عیسائی ہو جائیں، چاہے نصرانی ہو جائیں، کرسچنز ہوں، جیوز ہوں، چاہے گائے کو ماننے والے ہو جائیں، چاہے وہ گائے کی پوجا کرنے والے ہوں، یا چاہے مشرک ہوں، چاہے بت پرست ہوں. اسی لیے پہلے میں نے آپ کو مشرکین کی تمام قسمیں بتا دی تھیں، وہ سب جو ہیں وہ ذکر المخالف کے بیان میں آئیں گی. پھر اس کا ایک میں نے آپ کو بتایا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے بھی اس کے علوم کو جب جانچا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس میں 10 علوم کا تذکرہ ملتا ہے. اس کی تفصیل ہم جب تفسیر انشاءاللہ پڑھیں گے اس کے درمیان میں کریں گے. میں فاتحہ کے آخر میں انشاءاللہ اس کی تفصیل کروں گی. اور جو اہم ترین توجیہ ہے جو یہاں آپ نے سمجھنی اور یاد رکھنی ہے، جس کے اوپر پورا قرآن مجید انشاءاللہ آپ تقسیم کر سکتی ہیں، وہ اس طرح سے ہے کہ جو حضرت علی نے فرمایا کہ بھئی قرآن مجید میں بنیادی طور پہ 4 مسائل کا تفصیلاً بیان ہے، اور وہ ہے، پہلا ہے کہ سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورہ مائدہ تک، فاتحہ کے بعد سورہ نساء آتی ہے، سورہ بقرہ آتی ہے، پھر سورہ آل عمران آتی ہے، پھر سورہ نساء آتی ہے، پھر سورہ مائدہ 5ویں سورت ہے، ٹھیک ہے، ترتیب کے ساتھ ہیں یہ 5 صورتیں. تو انہوں نے کہا کہ ان تمام صورتوں میں نا زیادہ تر آپ کو جو کلیم ملے گا اللہ تعالیٰ کا، وہ اس کے کریٹیویٹی کا ہے، اس کی خالقیت کا بیان ہے اس میں، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایک کریٹر ہے، اور اس کی کیا کیا پروفس ہیں، اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ان 5 صورتوں کے اندر آپ کو ملیں گی، ٹھیک ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی خالق ہونے کا بیان جو ہے وہ کا جو مضمون ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے اس کے اندر. پھر جو دوسری بات انہوں نے کہی کہ سورۃ المائدہ کے بعد ساتھ جو اگلی سورت آتی ہے نا، وہ سورۃ الانعام ہے. سورۃ الانعام سے لے کر جب ہم پہنچ جاتے ہیں 15ویں پارے تک نا، بنی اسرائیل تک، وہاں تک انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے اپنے رب ہونے کی جو صفات ہیں نا ان کو ایکسپلین کیا ہے، اور اس کے بھی پھر سارے پروفس ہیں، اور وہ ساری باتیں ہیں، وہ سب ہم انشاءاللہ جو صورت پڑھیں گے اس کے اندر اس چیز کو لے کے آئیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح انہوں نے اس بات کو بیان کیا اور سمجھائے. اس کے بعد تیسری جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اقتدار ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی حاکمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ہر جگہ پہ متصرف ہونا، جو میں آپ کو شروع میں بتایا تھا. وہ سورہ بنی اسرائیل کے بعد کون سی سورت آتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے، سورہ کہف آتی ہے. سورہ کہف سے لے کر سورۃ الاحزاب تک جو ہے وہ ان باتوں کا سب کا بیان ہے 22ویں پارے میں. تو یہ متصرف ہونے کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار اور قدرت، اس کی حاکمیت اور اس کی جو ہے وہ بادشاہی، شہنشاہیت جسے ہم کہیں گے، شاہان شاہ ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ سب چیزیں ان صورتوں میں آتی ہیں، سورہ کہف سے سورہ احزاب تک. پھر سورہ احزاب کے بعد سورہ فاطر سبا آ جاتی ہیں، وہاں سے لے کر جو آخر کے پارے ہیں سارے، یہ سورۃ الناس تک، آخری سورت تک نا، یہ ساری جو ہے اس میں زیادہ جو مضمون ہے یا زیادہ تفصیل ہے وہ قیامت کے بیان کے بارے میں. تو گویا کہ 3 جو ہیں وہ اللہ کی صفات ہو گئیں، اور ان 3 صفات میں یعنی پورے 3/4 جو قرآن مجید ہے اس کے اندر اللہ کی خالق ہونا، اللہ کا رب ہونا اور اللہ کا متصرف ہونا، اسی میں اللہ تعالیٰ کی کتاب جو قرآن مجید ہے اس کی صداقت کا بھی تذکرہ ہے کہ سچی کتاب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی تذکرہ ہے، ٹھیک ہے. تو 2 عقیدے بھی یہاں پہ آ گئے، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کا اکیلے ہونے کا عقیدہ، کہ اللہ کی طرف جوڑنے کا عقیدہ، یہ سب جو ہے جڑنے کا عقیدہ، یہ سب ان 3 شروع کی پوائنٹس میں آ گیا. اور جو چوتھا پوائنٹ ہے قیامت کا، سورہ فاطر اور سبا سے لے کر سورہ ناس تک، تو اس کے اندر جو ہے وہ آخرت کا بیان آ گیا. انہی 4 عقائد کو بالکل ابتدا میں میں نے آپ کو شاید آپ کو یاد ہو تو بتایا تھا کہ ان 4 باتوں کا جو بیان ہے یہ بیسیکلی یہ قرآن کے کلیمز ہیں، اور انہی کو ڈسکرائب کریں گے ہم اس کے اندر. اس کے علاوہ ایک حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی جو اصول تفسیر کی کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے قرآن مجید کو اپنے علم کے مطابق انہوں نے اس کی تحقیق کی ہے، سمجھا ہے اور اس کی وہ کی ہے. تو اس میں وہ یہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مطلب جو ہے نا یہاں پہ پانچ علوم ملتے ہیں قرآن مجید کے اندر. ایک تو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہو گئے نا سمپلی, کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احکامات دیے ہیں, کیا حلال ہے کیا حرام ہے, کیا کرو کیا نہ کرو, ٹھیک ہے, اس طرح کے احکامات ہو جاتے ہیں, ان کو علم الحکام کہتے ہیں. کہہ رہے ہیں پھر دوسرے نا, جب ہم غور کرتے ہیں تو کہیں پہ دیکھیں آتا ہے کہ کسی کے ساتھ جیسے آپ بحث کر رہے ہوں, ٹھیک ہے, اور گفتگو کر رہے ہوں اور کسی کو دلائل دے کے آپ کوئی بات پروف کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو ہم عربی میں نا علم المخاصمہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. خصومت جو ہے جھگڑے سے ہوتی ہے ویسے, جو لفظی معنی ہوتا ہے اس کا. تو یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی جو مشرقین کی باتیں ہیں یا جو بھی ہیں تو اس کے اوپر مقدمہ قائم کرتے ہیں اور مخاصمہ کرتے ہیں, ہم یہ لفظ اس میں استعمال کرتے ہیں. عربک کی ٹرمنالوجیز ہیں جس طرح کہ آپ کی میڈیکل کی اور دوسری چیزوں کی ہوتی ہیں, تو اس میں یہی باتیں الفاظ زیادہ سوٹ کرتے ہیں, اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھے. لیکن ڈسکرائب کرنے میں یہ چیز آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب مشرقین کا بیان ہوتا ہے, کوئی بات آ رہی ہے کہ مشرقین کے بارے میں, تو پھر اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت اچھے طریقے سے اس کے جو جوابات دے رہے ہیں, سمجھیں آپ, یا وہ جو کیچڑ اچھالتے تھے اسلام کے اوپر یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یا کتاب کے اوپر یا وحی کے اوپر یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اوپر, ان کے جوابات جو اللہ تعالیٰ بہت بہترین طریقے سے دیتے ہیں, تو اس کو علم المخاصمہ کہا جاتا ہے. جو تیسری چیز ہے, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ جگہ جگہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا بیان کرتے ہیں نا, کہ الرحمن علم القرآن, خلق الانسان علمہ البیان, تو یہ ساری مطلب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی. سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کو انسان پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اور اس کو اپنا جانشین بنایا, پھر اس کے لیے زمین آسمان کو مسخر کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ ساری دنیا کائنات زمین آسمان میں نے انسان تیرے لیے بنایا ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا. تو یہ نعمتیں ہیں جو کہ یاد دلاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی, تذکرہ جو ہے. اس لیے ان کو انہوں نے اس کا نام جو رکھا, عربک ٹرمینالوجی میں ہم اس کو کہتے ہیں علم التذکیر بھی اعلیٰ اللہ, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے نا, وہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. تو یہ چیزیں انہوں نے کہا کہ تھرڈ نمبر پہ مطلب جو مجھے نظر آتی ہیں اس میں قرآن مجید میں. چوتھی جو انہوں نے کیٹیگرائز کیا وہ کیا کہ یہ جو واقعات اور قصے کہانیاں ہیں, اب جیسے اب دیکھیں نا پوری سورہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف آ گئی, جگہ جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام کے قصے ہیں, واقعات ہیں, قصص ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایام اللہ کہلاتے ہیں, اس کو انہوں نے کہا ہے کہ علم التذکیر بھی ایام اللہ. ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی کی ان ٹرمز کو یاد کریں, بس اس بات کو سمجھ لیں آپ کے لیے کافی ہے. تو مقصد بتانے کا صرف یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی نو ہاؤ ہو جائے, یہ سمجھ آ جائے کہ بھئی یہ کیا ہے, یہ ایک علماء نے جو اتنا تحقیقی کام کیے ہیں, اتنا کچھ کیا ہے, تو اس میں ان کی کیا کیا ٹرمز انہوں نے یوز کیے ہیں, اور کچھ تھوڑا سا ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے. تو علم التذکیر بھی ایام اللہ ان کو کہا گیا ہے, جو قصے کہانیاں واقعات اور قرآن مجید میں ہوتے ہیں. اور جو پانچویں چیز ہے وہ موت کا ذکر نا, کہ موت پہ کیا ہوگا, ما بعد الموت کیا ہوگا, یعنی کہ اس کو انہوں نے کہا ہے علم التذکیر بالموت و بعد الموت, یعنی کہ قیامت کا بیان اور انسان کے مرنے کا بیان. تو یہ پانچویں جو ہے وہ کیٹیگرائز جو انہوں نے کیا ہے, تو پانچویں کیٹیگری ہے اس کے بارے میں جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی علوم القرآن کی تفسیر کے اندر اس کو لکھا ہے. اس کے بعد اگلی ویڈیو آڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے اس کا کیا مطلب ہے, اس کی الگ الگ سے معنی اور اس کا مفہوم, اور اس کو جو ہے وہ کن احکامات کے تحت جو ہے وہ ان کو اس کو جو ہے وہ قرآن مجید سے میں پہلے پڑھا جاتا ہے. صدق اللہ العظیم.